हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। आंशी विधिक और मलिक के जाल से तो बचकर बाहर आ गई थी, पर उसके सामने और भी नई मुसीबतें थीं। उसमें सबसे बड़ी मुसीबत थी कि उसके पास उसका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था। आंशी ने लंदन जाने की इच्छा जताई थी। वो एजेंसी ऑफिस में थी। उसे वहां आए 3 से 4 दिन हो गए थे। इस बीच मेट ने उसके लिए डॉक्टर अरेंज किया। अब वो फिजिकली पूरी तरह रिकवर कर चुकी थी। शाम के समय मेट उससे मिलने के लिए आया। तब आंशी ने उससे पूछा, मुझे लंदन जाने में कितना टाइम लगेगा और विधिक, उसकी कोई खबर है? विधिक ने तुम्हें ढूंढने के लिए पूरा पेरिस एक कर रखा है। हमारे कुछ एजेंट उसके आसपास भी हैं। वो तुम्हें लंदन और इंडिया में भी ढूंढ रहा है। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? आंशी ने परेशान होकर पूछा। घबराओ मत, तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट बनकर आने में 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा। तब तक तुम यहाँ रह सकती हो। इतने टाइम तक तुम विधिक को नहीं मिलोगी, तब शायद वो यकीन कर ले कि तुम अब मर चुकी हो। मेट की बातें सुनकर आंशी ने राहत की सांस ली। उसने उसकी बात पर हामी भरी और कहा, मतलब आगे के 4 महीने मुझे फिर से इस बंद कमरे में रहना होगा। तुम्हारी बातों से लग रहा है तुम यहाँ बोर हो जाती होगी। तुम्हारे एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम किया गया है, फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो, मेट ने जवाब दिया। आंशी के ठहरने के कमरे में हर तरह के इंतजाम किए हुए थे ताकि वो आराम से वहाँ रह सके। नहीं, ऐसा नहीं है। वैसे देखा जाए तो एक तरीके से अच्छा है। इस टाइम में मैं खुद को एक्सप्लोर कर पाऊंगी। अकेले रहते हुए शायद मुझे सही गलत की पहचान हो जाए और आगे से किसी पर भरोसा करने से पहले अच्छे से सोच विचार करूं। आंशी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। फिजिकली तो वो ठीक हो गई थी, पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो सब चीजें अभी भी उसे परेशान करती थीं। मेट ने उसके डर को महसूस करते हुए कहा, अच्छा, मेरे पास एक ऑफर है। कैसा ऑफर? आंशी ने हैरानी से पूछा। ऑफिशियली तुम एक एजेंट नहीं बन सकती। इसके लिए बहुत मेहनत लगती है और एक लंबी ट्रेनिंग भी। क्यों ना जब तक तुम यहाँ हो मैं तुम्हें फ्यूचर के लिए ट्रेन कर दूँ। देखो आंशी, तुमने जिस इंसान से प्यार किया है वो आम इंसान नहीं है। ये बात अब तक तुम्हें समझ आ गई होगी। वो इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते वाला। कभी गलती से भी या इत्तेफाक से तुम उससे वापस मिलो तो ऐसा ना हो कि तुम उसके सामने कमजोर पड़ जाओ, या हो सकता है कि तुम्हें अपनी जिंदगी में उससे भी बदतर लोगों का सामना करना पड़े। मैं नहीं चाहता तब तुम डरो या थोड़ा सा भी घबराओ। दिल ही दिल में मेट ने आंशी को अपनी छोटी बहन की जगह दे दी थी और अब वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में वो किसी मुसीबत में पड़े। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। उन 3 महीनों में मेट उसे न केवल फिजिकली बल्कि मेंटली स्ट्रांग बनाने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। उसने आंशी को अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट्स, डिफेंस आर्ट्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रेन किया। ट्रेनिंग के बाद रात को दोनों खुले आसमान के नीचे बैठते और ढेर सारी बातें करते। आंशी को वहाँ आए हुए लगभग 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में उसमें काफी बदलाव आ गए थे। पुराने टाइम के बारे में सोचते हुए आंशी ने कहा, थैंक यू सो मच मेट, आई विश मैं तुमसे पहले मिली होती तो मेरी लाइफ इतनी ही डिफरेंट होती। उसकी बात पर मेट हंसकर बोला, नहीं आंशी, हमारा इस तरह की सिचुएशन में ही मिलना जरूरी था ताकि तुम बहुत कुछ सीख सको। मैंने मैम से बात की थी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट रेडी हैं। वो काम उन्होंने काफी सीक्रेटली किया है। जैसे हमारे आदमी विधिक के पास रहते हैं वैसे उसका भी कोई न कोई आदमी यहाँ हो सकता है। आंशी ने उसकी बात पर हामी भरी। वैसे अब मुझे यहाँ रहते हुए मजा आ रहा है, क्यों ना मैं यहीं रह जाऊँ और तुम्हारी तरह पूरी ट्रेनिंग लेकर इस काम में लग जाऊँ। वो इतना आसान नहीं है। खैर छोड़ो, अब मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद हम शायद ही कभी मिल पाएं या एक दूसरे से बात कर पाएं। अपना हमेशा ख्याल रखना। कभी कभी तो हम बात कर ही सकते हैं ना, इतना तो चलता है। मेट ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, हम नहीं मिल सकते। पता है आंशी, मुझे तुम्हारे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि तुम बहुत मासूम हो। अपनी मासूमियत का किसी को फायदा मत उठाने देना। अब तो गलती से भी कोई मुझसे नहीं उलझ पाएगा। पहले वो मासूम आंशी जिंदल को जानते थे, अब वो आंशी जिंदल आधी एजेंट है, अकेले ही सबके छक्के छुड़ा सकती है। आंशी की बात सुनकर मेट हंसने लगा। फिर उसने कहा, ऐसा भी मत करना मेरी लिटिल फाइटर। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है जब हम अकेले नहीं निपट पाते, तब अपने आसपास के लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। हमेशा चौकन्ने रहो और अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करो। कहीं कुछ भी गड़बड़ लगे और वो महसूस हो कि आप परिस्थिति को अकेले नहीं संभाल सकते, तो अपने आसपास के लोगों को भी उसमें लगा लो। लोगों के ध्यान केंद्रित करने के कई तरीके हैं। चिल्लाकर बात करना या ऐसे प्रिटेंड करना कि आपकी बातें कोई नहीं सुन रहा, जबकि आप अपनी बातें कई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। आंशी मेट की हर एक बात ध्यान से सुन रही थी। वो आगे बोला, विधिक तुम्हारी फीलिंग के साथ खेल पाया, पर आगे किसी और को वो मत करने देना। अगर कोई अच्छा भी लगे तो पहले कन्फर्म करना कि क्या सच में उसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग है या वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी मासूमियत है, तो इसे कभी कमजोरी मत बनने देना। लोगों को अक्सर शौक होता है अपना टैलेंट या बहादुरी दिखाने का। सच कहूँ तो मुझे वो लोग थोड़े बेवकूफ लगते हैं जो समझदार होने का दिखावा करते हैं। समझदार होने में कुछ नहीं रखा है। बेवकूफ बनकर रहो और ऐसे प्रिटेंड करो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मौका मिले तभी वार करो। बाकी कई बार बेवकूफ बनकर रहने में भी कोई बुरी बात नहीं है। मेट की दी हुई ट्रेनिंग के बारे में बताते हुए आंशी ने अमन को बताया। अब अमन को भी कहीं न कहीं आंशी के बिहेवियर का समझ आ रहा था। याद है, सबसे पहले हम उस मेले में मिले थे, आंशी ने बताया। मैंने उस आदमी को बॉम्ब प्लांट करते देख लिया था, पर मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। वहाँ बहुत भीड़ थी और जैसा कि मेट ने कहा कि भीड़ का फायदा उठाओ, और मैंने वही किया, और इस चक्कर में तुमने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया था, अमन ने जवाब दिया। हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था कि वहाँ भी कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है। जब उस आदमी ने मुझे किडनैप किया, उससे मैं खुद बचकर आ सकती थी, पर उसने मुझे बेहोश कर दिया। शायद तभी तुम्हें मुझ पर हमेशा से डाउट था कि, अमन बोल रहा था तभी आंशी उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, नहीं मैं श्योर थी। आंशी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इतनी ही बहादुर बनती हो तो विधिक के सामने आते ही तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम क्यों हो जाती है? तुम उससे इतना डरती क्यों हो? उन दोनों की बातें सुन रही अमन की टीम और मिस्टर दत्त भी हैरान थे कि आंशी की किसी तरह की ट्रेनिंग हुई थी। वो लड़की हमेशा से हमारे साथ खेल रही थी। हम चाहें तो इसकी ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू करवा कर इसे विधिक के पास भेज सकते हैं, लावण्या ने मिस्टर दत्त से कहा तो उन्होंने नाम इससे हिला दिया। जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक आंशी को हम विधिक के सामने नहीं ला सकते हैं। वो हमारा ट्रंप कार्ड है और ट्रंप कार्ड को हमेशा आखिर में रखा जाता है, मिस्टर दत्त ने जवाब दिया। वहीं अलग रूम में बैठे अमन ने आगे पूछा, तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद तुम इंडिया आ गई थी क्या?
नहीं, मैं लंदन जाना चाहती थी, अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वहाँ रहते हुए मुझे पता चला कि विधिक ने मान लिया है कि मैं मर चुकी हूँ, और उसने मेरी शोक सभा भी रखवाई थी। वो उसका वो कदम था जो हम कभी नहीं समझ पाए। मेरे डॉक्यूमेंट बनने तक मेरी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और मैं लंदन के लिए निकल गई। अमन गौर से आंशी की हर एक बात सुन रहा था और उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो रहा था। आंशी आगे बताते हुए बोली, मेरे खास दोस्त विधिक के हाथों मर चुके थे, लेकिन वहाँ और भी कुछ दोस्त थे जो पेरिस नहीं जा पाए थे। पहले कुछ दिन तक मैं अपने पापा के दोस्त के यहाँ रही और फिर मैंने अपने लिए एक अलग अपार्टमेंट ले लिया। पूरे दिन कॉलेज में बिताने के बाद रात को अपार्टमेंट में जाती थी सिर्फ सोने के लिए। मैंने वहाँ 4 महीने बहुत आराम से बिताए। मुझे विधिक से अलग हुए लगभग 8 से 9 महीने बीत चुके थे और इतना टाइम काफी होता है किसी को आगे बढ़ने के लिए। मैं भी विधिक राणा को पूरी तरह भूल चुकी थी और आगे बढ़ने लगी थी। लेकिन एक रात